नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दी बधाई। केंद्र सरकार ने कहा, पश्चिम एशिया संकट के बीच देश की बिजली और ऊर्जा जरूरतों की मांग सफलतापूर्वक पूरी की जा रही है। जाति जनगणना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने किया खारिज। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना। अब समाचार विस्तार से। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति सह राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई।
मैं नीतीश कुमार, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं।
इस अवसर पर राज्यसभा के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता राजीव रंजन सिंह, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री देर शाम पटना वापस लौट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2 दशकों के शासनकाल का समापन होने जा रहा है। इस शानदार पारी में उन्हें विकास पुरुष और सुशासन बाबू जैसे कई उपाधियों से संबोधित किया गया। एक रिपोर्ट।
नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि बहुमत साबित न कर पाने के कारण उन्हें केवल 7 दिन बाद 10 मार्च 2000 को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद वो नवंबर 2005 में दोबारा मुख्यमंत्री बने और अपना कार्यकाल पूरा किया। श्री कुमार देश के पहले राजनेता हैं जिन्होंने 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सुशासन और सेवा की अपनी प्रतिबद्धता से नीतीश कुमार ने एक लंबी लकीर खींची है। उनकी चलाई हुई कई योजनाएं जैसे साइकिल योजना, शराबबंदी और महिला आरक्षण काफी सराहनीय रही। उन्होंने राज्य के शहरों, गांवों और टोलों तक सड़कों का जाल बिछा दिया, घर घर तक बिजली पहुंचाई और बिजली की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि अपराध पर नियंत्रण रही। आज पक्ष या विपक्ष के सभी नेता यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के विकास की रफ्तार को बरकरार रखना आने वाले मुख्यमंत्री और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। समाचार कक्ष से मैं निधि श्री।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री कुमार देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं और सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर जगह सराहना होती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिहार के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के पूर्व सभापति हरिवंश को भी राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने पर बधाई दी है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने पर बधाई दी है। बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह ने महिला आरक्षण पर कहा है कि विकसित भारत की परिकल्पना का जो संकल्प है उसको लेकर हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी वादों को धरातल पर उतारा है। सुशील सिंह ने नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद उन्हें बधाई दी है।
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को विकसित बनाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए जिस तरह से काम किया है, वाकई में एक लंबी लकीर उन्होंने खींच के दिखाई है। जंगल राज से निकाल के गुड गवर्नेंस का उदाहरण नीतीश कुमार जी ने बिहार के सामने रखा है। आज उन्होंने राज्यसभा का शपथ भी लिया है, मन में एक खुशी भी है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बीच उसने देश की बिजली और ऊर्जा जरूरतों की चरम मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग के दौरान विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव पीयूष सिंह ने कहा कि सभी ताप विद्युत संयंत्र पर्याप्त कोयले के भंडार के साथ पूरी क्षमता से चल रहे हैं। इस बीच संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले महीने 14 मार्च से अब तक 1,06,000 टन व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति की जा चुकी है।
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक है और हमारे पेट्रोल पंप पर भी पर्याप्त डीजल और पेट्रोल उपलब्ध है और ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं हुआ है। हमारी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई नॉर्मल है और ऑनलाइन बुकिंग लगभग 98% तक हो गई है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% तक रेस्टोर की गई है और इसमें हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, फार्मा, माइग्रेंट लेबर सभी को प्रायोरिटी दी गई है और 14 मार्च से लगभग 1,06,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है।
चंपारण सत्याग्रह की आज 109वीं वर्षगांठ है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के स्वतंत्रता संग्राम का यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वर्ष 1917 में इसी दिन चंपारण जिले में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नील किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। यह देश में महात्मा गांधी के सत्याग्रह का पहला प्रयोग भी था। एक रिपोर्ट।
स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल के लगातार आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और किसानों की उस समय की स्थिति की विस्तार से पड़ताल की। तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने महात्मा गांधी से इलाके को तत्काल छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने इस आदेश को नहीं माना और अहिंसक आंदोलन के माध्यम से किसानों को संगठित किया और उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक जांच समिति का गठन हुआ। गांधी जी को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया। यह आंदोलन सफल रहा और वर्ष 1918 में जबरन नील की खेती की प्रथा समाप्त कर दी गई। चंपारण सत्याग्रह ने न केवल किसानों को न्याय दिलाया बल्कि गांधी जी को एक जन नेता के रूप में स्थापित किया और भारत के व्यापक स्वतंत्र आंदोलन की नींव रखी। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रदेश में आज से पैक्सों और व्यापार मंडलों के माध्यम से मसूर की खरीद शुरू हो गई है। मसूर का समर्थन मूल्य 7,000 रूपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस बार 32,000 मीट्रिक टन मसूर खरीद का लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी स्टूडियो पटना में आयोजित विशेष कार्यक्रम में कौन बनेगा मुख्यमंत्री विषय पर एक परिचर्चा की रिकॉर्डिंग की गई। परिचर्चा में वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी और प्रियरंजन भारती ने भाग लिया। यह विशेष कार्यक्रम कल संध्या बुलेटिन के बाद रात 7:52 से सुना जा सकता है। जनगणना 2027 के पहले चरण में अब तक 5,72,000 से अधिक परिवारों ने स्वगणना सुविधा का लाभ उठाया है। भारत के महापंजीयक ने कहा कि यह जनगणना के लिए डिजिटल पहल में बढ़ती जनभागीदारी को दर्शाता है। जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल को शुरू हुआ था। स्वगणना सुविधा 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। मकान सूचीकरण और आवास गणना 16 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक चलेगी। दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। यह चरण अगले वर्ष फरवरी में शुरू होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति जनगणना पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। इससे पहले 2 फरवरी को शीर्ष अदालत ने 2027 की जनगणना में नागरिकों के जातिगत आंकड़े के रिकॉर्ड वर्गीकरण और सत्यापन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति पर किए गए सवाल से जुड़ी एक जनहित याचिका पर भी सुनवाई से इनकार कर दिया था। 2027 जनगणना देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना है। अररिया जिला प्रशासन ने निजी विद्यालयों की मनमानी पर सख्ती दिखाई है। जिलाधिकारी विनोद दुहन ने कहा कि निजी विद्यालय किताबों और ड्रेस की सूची जारी करेंगे, लेकिन अभिभावक कहीं से भी खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। किसी विशेष दुकान से खरीद के लिए बाध्य करना प्रतिबंधित रहेगा।
तहरीर जिलावासियों से अपील करता हूं कि यदि इस तरीके का कोई आपको बाध्य करता है तो आप जिला प्रशासन यहां जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहां कंप्लेंट कर सकते हैं। और ऐसे स्कूल्स, कोई भी स्कूल आपको बाध्य नहीं कर सकता कि किसी एक पर्टिकुलर जगह से आपको कोई सामग्री खरीदनी।
जिलाधिकारी ने कहा है कि नियमों के उल्लंघन करने वाले संबंधित विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जानकारी दें। पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा थाना क्षेत्र के मठ मंझरिया चौक के पास पुलिस महानिदेशक और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर पुलिस ने छापेमारी कर आर्केस्ट्रा में काम कर रही 8 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया। एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि इस मामले में 4 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को गिरफ्तार किया गया है।
बेतिया पुलिस द्वारा मानव तस्करी उन्मूलन एवं पुनर्वास हेतु समकालीन अभियान चलाया गया। समकालीन अभियान के क्रम में गौनाहा थाना अंतर्गत संचालित ऑर्केस्ट्रा के विरुद्ध छापामारी की गई। छापामारी में 8 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है एवं 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में गौनाहा थाना में प्राथमिकी अंकित कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
केंद्रीय बजट 2026 से जुड़े विषयों पर चर्चा के लिए 12 और 13 अप्रैल को माई भारत बजट क्वेस्ट का आयोजन पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में किया जाएगा। यह आयोजन मेरा युवा भारत बिहार और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का समापन 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल संवाद के रूप में होगा। कार्यक्रम में देश भर के 15,000 से अधिक युवा शामिल होंगे। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम होने के साथ ही राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अररिया और किशनगंज में मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि सुपौल, मधुबनी और पूर्णिया में बहुत ही हल्की बारिश हुई। साथ ही राज्य के शेष भागों में मौसम शुष्क बना रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ पश्चिम चंपारण का मोतिहारी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दी बधाई। केंद्र सरकार ने कहा, पश्चिम एशिया संकट के बीच देश की बिजली और ऊर्जा जरूरतों की मांग सफलतापूर्वक पूरी की जा रही है। जाति जनगणना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने किया खारिज। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।